ये है वो आयत जिसको मेरे और आपके लफ्जों की जरूरत ही नहीं है। मैं इस आयत पे अक्सर यही बात कहती हूँ कि मैं आपको ये आयत सिर्फ तर्जमे से सुना दूँ, बीच में सिर्फ तर्जमा ही जैसे हल्का हल्का वाजे करती हूँ, तो दैट विल बी एनफ, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आयत है। आइए जरा आयत को साथ लेके चलते हैं, आयत 275। अल्लज़ीना याकुलूनर रिबा, बेशक वो लोग जो सूद खाते हैं। अब यहाँ लफ्ज़ देखिए, याकुलून का तस्कर है खाना, क्या मतलब है? मुफस्सरीन कहते हैं कि सूद के खाने की बात क्यों की गई, और बाकी भी चीज़ों में आप देखें अक्सर जब भी लफ्ज़ हराम की बात आती है तो खाने की बात आती है, हालांकि जब एक बंदा गलत कमाई करता है तो उसे खाता भी है, पीता भी है, पहनता भी है, घोड़ता भी है। क्वेश्चन है ना, तो इसका जवाब नोट कर लीजिएगा कि खाने की बात क्यों की, कि जब बंदा कोई चीज़ खाता है, मिसाल है हराम का लुकमा उसके पेट में गया, तो वो खाना उसकी ज़ुबान के टेस्ट बड से लेकर उसके जिस्म से निकलने तक जिस्म के पूरे एक एक जर्रे के अंदर एनर्जी की सूरत में फैल चुका होता है। मतलब अगर आप एक चीज़ पहनते हैं, हो सकता है वो सिर्फ आपके जाहरी पोशाक को शो करेगी, लेकिन खाई हुई चीज़ का असर जिस्म के रग रग में जाता है। तो मतलब क्या है कि जिसने गलत चीज़ या गलत तरीके से कोई चीज़ कमा कर खा ली, उसको देखा तो गोया कि वो उसके जिस्म में उसका एक एक रगो रेशे में पहुंच गया। क्या खाते हैं? रिबा, सूद। क्या होता है रिबा? वो इजाफा जो असल रकम पर हो, यानी इजाफा जो किसी को वाजिबुल अदा रकम पर अदा किया जाए और इसके मुकाबले में कोई मेहनत, महारत, साजो सामान या खतरा मौजूद ना हो। ये वही चीज़ें जो पीछे बता चुकी हूँ, सिर्फ मैंने मुश्किल लफ्ज़ बोले हैं। यानी ऐसा इजाफा, ऐसी कसरत किसी माल के ऊपर जिसके मुकाबले में कोई रिस्क ना हो, कोई एफर्ट ना हो, कोई हार्ड वर्क ना हो, कोई स्किल नहीं लग रही है आपकी, ठीक है? मसा आप देखिए कि आप किसी को घर किराए पे देते हैं, आपका घर 3 लाख रुपए का है, आपने वो घर किराए पे दिया, आप उसका 3,000 महीने का किराया लेते हैं, तो क्या फिर ये सूद है? नहीं, घर आपका 3 लाख का था, जब किराएदार उसमें रहेगा तो रहने की वजह से रिस्क है ना कि आपके घर में कुछ जो नयापन था वो पुराने में बदल जाएगा, ठीक है? किरायादार जो वहां रह के इस्तेमाल कर रहा है आपके घर के अंदर जो चीजें, जो आपकी स्केल, जो एफर्ट्स थी, उसके मुकाबले में कुछ कर रहे हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को 3 लाख रुपया दे देते हैं कर्ज पे और कहते हैं कि हर महीने 3,000 मुझे देते जाओ और एंड पे फिर वो 3 लाख भी लूंगा, ये सूद है। क्यों? कि उस 3 लाख के मुकाबले में कोई रिस्क नहीं है, आपकी एफर्ट नहीं लग रही और इसी तरह बाकी चीजें, ठीक है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, कुल्लू कर्दिन जर्रा नफअन फहुवा रिबा, कुल्लू हर कर्दिन कर्ज जर्रो जो खींच के ले आए, नफअन नफे को, फहुवा रिबा वो सूद है। यानी किसी को कर्ज दिया और उस कर्ज के मुकाबले में कुछ भी प्रॉफिट मिल गया आपको, ये सूद है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का अमल मिलता है कि किसी को अगर उन्होंने कर्ज दिया होता, देते थे लोग, बहुत देते थे, और जहां मुस्लिम माशरा होगा मुसलमान मुसलमानों को बहुत कर्ज देंगे क्योंकि हर तरह जरूरतमंद लोग हर जगह मौजूद होते हैं, तो जिससे कर्ज लेना होता ना, जिसको कर्ज दिया हुआ था, तो उसके घर के दीवार के साए में नहीं बैठते थे, कहते थे कि कहीं ये सूद ना बन जाए, यानी कि मैंने उसकी दीवार से फायदा उठा लिया। ये उनके तकवा का मेयार था, हम बात सिर्फ इस तरह से करते हैं। तो लिहाजा कर्ज किसी के मामले में जो हुआ, अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा, जो लोग खाते हैं सूद को, ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस्सी, नहीं वो खड़े हो सकेंगे मगर इस तरह जैसे शैतान ने किसी शख्स को छूकर बावला कर दिया हो। एक स्ट्रेच में पढ़े तो वो कब्रों से इस तरह उठेंगे जैसे शैतान ने किसी को छूकर ख्वास बाख्ता कर दिया हो। क्या है ये चीज? कहते हैं कि ये कैफियत असल में तो कियामत के दिन होगी, कब्रों से कियामत के दिन जब ये उठेंगे सूदखोर, तो सीधे भी ना खड़े हो सकेंगे, जैसे ड्रंक लोग होते हैं ना, शराबी, नशई, मतवाले, खपती, दीवाने, गिरते पड़ते लुढ़कते हैं। असल में मंजर वहां का है लेकिन इसका एक रंग इस दुनिया में दिखता है, और वो कब, जब सूदखोर पैसे की मोहब्बत में दीवाना वार फिरता है, बावला हो जाता है। कभी आप स्टॉक एक्सचेंज का कोई एक मंजर देखें टीवी की स्क्रीन पे, हो गया गया, आया गया, मिला, पकड़ो, ये वो, बेहोश हो जाते हैं लोग। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे शेयर्स में लगाए होते हैं, उनको घर बैठे हार्ट अटैक हो जाता है रेट डॉलर का घटता बढ़ता देखकर। पागल लगता है बंदा, जिन भूत चिमटते ऐसे हर वक्त पैसा, सोते नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जानती हूँ कि वो जब पाकिस्तान में रात होती है ना तो वो टीवी लगा के बैठ जाते हैं, उनकी बेगम कहती है ये दीवानों की तरह यूं देखते हैं टुकर, क्या है अब अमेरिका में सुबह हो गई, अब रेट चेक कर लें क्या आ रहा है, और वहीं बैठे हुए कोलैप किए हुए एक दिन मिल गए, पता चला कि वो रेट इतना गिरा है सारे शेयर चले गए, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। क्या ये खपतीपन नहीं है? इस्लाम इंसान को इस दुनिया की असल हकीकत दिखाता है। इसके ऊपर जो एक वनीर चढ़ा हुआ है ना, जो एक खोखला गोल्डन कागज है उसको निकालता है, लेकिन माल की मोहब्बत में चूर शख्स, हिर्स, दीवानगी इतनी बढ़ती है कि ना उसको खाने की फिक्र, ना पीने की फिक्र, ना बीवी, ना बच्चे। तो जिस तरह दुनिया में पैसे के पीछे भागते हैं ना, इस तरह कयामत के दिन भाग रहा होगा। अब अल्लाह कहते हैं कि ये हालत इनकी बन गई कि ये वहां खड़े नहीं हो रहे। है मुहावरा लेकिन जहन में आता है ना इसको सुनकर कि कैसा वो शख्स होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, क्यों इनकी ये हालत हुई, जालिका भी अन्ना हूं, ये जालिका के नीचे लिखिए ये हालत, इनकी ये हालत या इनका ये इंजाम क्यों हुआ, बिअन्नहुम कालू, इस वजह से कि इन्होंने कहा, इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, कि खरीदो फरोख्त भी तो सूद ही की तरह है। इस जुमले को हाईलाइट कर लें, पहली बात देखिए ये जुमला कुरान का नहीं है, ये सूद के काम में इन्वॉल्व लोगों का एक जुमला है जो अक्सर लोग बोलते हैं। अहदे जाहिलियत में अरब लोग सूद और ट्रेडिंग या बै का फर्क नहीं रखते थे, कहते थे देखो ना दोनों में किसी को फायदा ही तो हो रहा है। इस्लाम कहता कि नहीं, फायदा नहीं है, कैसे, क्या फर्क है? देखिए जो बै, आप एक लाइन लगा लें, एक तरफ बै लिख लें यानी बिजनेस या कारोबार ट्रेडिंग, और दूसरी तरफ सूद को लिख लीजिए। कारोबार में मेहनत लगती है, सूद के काम में कोई मेहनत नहीं है। फिर दूसरी चीज देखिए कि कारोबार में आपकी अकल इस्तेमाल होती है, तदबीर करते हैं आप, उधर कोई तदबीर नहीं। तीसरी चीज यह है कि वक्त लगता है कारोबारों में, और जिनके मर्द बिजनेस मैनेजर हैं उन औरतों से तो पूछिए, खाने का वक्त नहीं, कहीं जाने का वक्त नहीं, जबकि ऑपोजिट दूसरी तरफ देखे तो इसमें वक्त नहीं लगता। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो कारोबार है वो एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, सुबह उठते हैं मर्द तैयार हुए, घरों से बाहर गए, काम कर रहे हैं, पढ़ ठीक है, सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, फोन पे बातें ले दे रहे हैं, खुश, अच्छी बात है। शाम को थके हारे आते हैं, बीवी बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत सा माहौल बन जाता है। इसके बरक्स अमूमन जिन मर्दों ने अपना पैसा सूद पे दे के रखा हुआ है वो सारा दिन घर में बैठे, बीवी पे तनकीद, बच्चों पे तनकीद, और जिस घर में मर्द रहेगा ना पूरा दिन वो घर कभी आइडियल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने मर्द की फितरत बनाई है कि वो घर से बाहर खुश रहता है, जिस तरह औरत की तबीयत है ना कि घर में खुश रहती है, आप उसको मर्द बना के बाहर काउंटर्स पे खड़े कर देते हैं वो औरत ही नहीं रहती, इस तरह घर में रहने वाले मर्द मर्द नहीं रहते, वो सासें बन जाती हैं, हर बात पे तनकीद, लड़ाई झगड़ा। तो जब लोग हर वक्त घर में होंगे तो क्या करेंगे, या बीवी पे तनकीद, या कहेंगे बैठो बातें करो, आओ मुझे कंपनी दो, अब वो कितनी को देगी, काम उसके रुकेंगे। फिर दूसरी चीज है कि वो स्क्रीनों के आगे बैठ के अपना टाइम जाया करेंगे, मुफ्त खोरी और खाली जहन, कहते हैं कि शैतान की वर्कशॉप होता है, फिर गलत चीजें देखना सुनना और कई और किस्म की खराबियां आती हैं। तो गोया के ऐसा बंदा जो कारोबार नहीं कर रहा वो बिल्कुल सोसाइटी का एक बोझ बन जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं उसमें नफा और नुकसान दोनों की उम्मीद है, सूद में नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आप देखिए कि कारोबार जो होता है उसके अंदर इंसान को बाज़ औक़ात किसी पे रहम आ गया, किसी का कोई छोड़ दिया, पैसे देने थे दिए नहीं लिए, कितने नेकियों के और मौके होते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि कोई गरीब आ गया सामने, चलो ऐसे ही ले जाओ, चलो है तो 10 का, चलो तुम 2 ही दे दो, चलो जो है दे दो, यानी एक माशरे में बड़ा खूबसूरत निज़ाम पलता है, लोगों की ज़रूरतें आप पूरी कर रहे हैं। आप देखिए ना कि आप एक ग्रोसरी स्टोर खोल के बैठे हैं, ठीक है बनाने वाले ने अपने पैसे के लिए लिया, लेकिन कितने लोगों को फ़ायदा हुआ कि उनको ग्रोसरी मिल गई, आप इमेजिनेशन में लाएं जरा। सारी दुनिया के लोग अपने पैसे को सिर्फ पैसे ही बेचने पर रख लें तो ना दुनिया में ग्रोसरी स्टोर बनेंगे, ना कपड़े की दुकानें बनेंगी, ना कोई गोश्त बेचेगा। कौन बेचे भाई? मैंने तो पैसे कमाने हैं, मैं पैसों पे पैसा ले रहा हूं, तो मैं क्यों गोश्त बेचूं? सारी दुनिया का निजाम कुलैप हो जाता है जब लोग पैसे के बदले में पैसा खरीदते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ये धोखा क्या देते थे कि कारोबार और है ये दोनों एक जैसी हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये गलत है, क्योंकि वह अहल्लल्लाहुल बैया व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को तो हलाल किया और उसको हराम किया। यहाँ लफ्ज़ हर्रमा को आप हाईलाइट कर ले। आपको आज के सबक से तीन लफ्ज़ मिलेंगे जो उन लोगों को बताने दिखाने के लिए काफी होंगे जो ये कहते हैं कहाँ लिखा है। क्योंकि जब शराब की हुरमत की बात आती है ना, तो लोग कहते हैं शराब के लिए हुरमत का लफ्ज़ किधर है, दिखाओ किधर हराम है। तो इस वक्त शराब नहीं, आप सूद के लिख लिए कि अल्लाह ने सूद के लिए हराम का लफ्ज़ बोला है। हराम, हर रमा यो हर रिमो तहरीम। और अगर आपको थोड़ी सी ग्रामर आप समझ आने लग गई है ना, एक लफ्ज़ होता है हरमा अहरमा, और यहाँ रॉ के ऊपर शत जो है ना, हर रमा यो हर रिमो तहरीम, शिद्दत के साथ किसी चीज़ को हराम करार देना। एक ये लफ्ज़ है, बाकी जो आगे आएंगे वहाँ बताऊंगी कि अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो एक जुमला ही बहुत है कि बिजनेस इसलिए हलाल है कि अल्लाह ने हलाल किया। क्या बताइए, इसके आगे कोई क्वेश्चन है? ये सारी जो बातें मैंने आपको फर्क बताया, इसको बड़ा सा क्रॉस करके काट भी देना, तो एक ये जुमला पूरी बात पे भारी है कि तिजारत इसलिए हलाल है कि अल्लाह ने कह दिया हलाल है, दैट्स इट। और सूद इसलिए हराम है कि अल्लाह ने कहा। लेकिन अल्लाह ताला की ये सुन्नत नहीं कि किसी चीज को बस ऐसे ही पकड़ के हलाल या हराम कह दे। तो फरमाया कि मन जो जब अल्लाह के लिए झुके हो तो फिर हलाल और हराम उसके मन जो, बात समझ आती है ओके, नहीं आती तो भी ओके। उसके हर हुक्म की हिकमत हमारी छोटी सी खोपड़ी में नहीं आ सकती। सीधी सी बात है, मान लोगे तो फायदा होगा। अब करें क्या? फमन जाहु मौइज़ातुम मिर रब्बिही, बस जिस शख्स को उसके रब की ये नसीहत पहुंच गई। कौन सी नसीहत? मौइज़ात उनके नीचे लिखिए हर्रम अर्रिबा वाली। जिस शख्स को, फमन कौन है इस वक्त? मैं, हम सब, जिस तक ये आयतें पहुंच गई, जिस तक ये नसीहत पहुंच गई, अपने रब की बात समझ आ गई, तो क्या करे? फंतहा, अल्लाह करे हम ऐसे ही हों। रुक गया, किस चीज से रुक गया? नीचे लिखिए सूदखोरी से रुक गया। क्या होगा? फलहुमा सलफ, तो जो पहले सूद वो खा चुका सो खा चुका, यानी अब उसका पिछला खाता बंद। तौबा कर ली, छोड़ दिया, जो किया छोड़ दिया। अब इसे ये नहीं, मुफसरीन लिखते हैं कि मां सलफ से मुराद ये नहीं है कि उसको अब गुनाह नहीं होगा, है वो अपनी जगह, लेकिन वामरुहु इलल्लाह, उसका मामला अल्लाह के जिम्मे है। और जब तौबा करता है, अल्लाह ताला उसको कभी रुसवा नहीं करता। सीधी सी बात कह दी कि अगर सुनने के बाद छोड़ दिया तो पिछले खाते, पिछले अपने माल को कहाँ क्या करे, पिछली जिंदगी, घर किस पे बनाया, वो क्या किया, बैग पे चले जाओ, जो असल माल था ना पहले दिन वो ले लो, और सूद का सब छोड़ दो। ये अब बहुत सारी इसकी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो एंड पे शायद डिस्कस कर सकें तो ज्यादा फायदा होगा, कि बस अब छोड़ दो, इस्लाह की फिक्र करो, उसके ऊपर कोई नजरें ना उठाओ, हाथ ना उठाओ। ये है पहला किरदार, इस पे आप वन लिख सकते हैं। अल्लाह हमें सबको इसमें कर ले, दुआ करें हम इस मन में आ जाए। नहीं होते तो एक दूसरा किरदार, व मन आदा, और फिर भी जो कोई सूद खाए, फिर एयादा करे, फिर दोहराए, इतनी शिद्दत के खबती बन के क्यामत के दिन उठेगा। और अभी आपको चंद हदीसें भी अगर नोट करा दूंगी तो फिर तो और भी शिद्दत समझ आ जाती है। यानी इस हुक्म को सुन के भी अगर कोई ये काम ना छोड़े, फउलाइका असहाबुन्नार, तो ये आग के साथी। यहाँ नंबर टू लिखिए, वन किधर था? हर्रमल्लाहु रिबा, हुरमत का लफ्ज़, और दूसरा लफ्ज़ असहाबुन्नार, कैसे लोग दोजख के साथी हैं, हुम फीहा खालिदून। ये है नंबर थ्री। तीन दलाइल हैं सूद के हराम होने के इस एक सबक के अंदर, कि ऐसे लोग हमेशा दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ में रहेंगे। और ऐसे लोगों का मामला अल्लाह ताला ने खोल के बयान कर दिया कि वो ये ना सोचें कि हम बहुत मुतमईन है, ये है वो है, बल्कि ऐसे लोग जो हैं क्यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मुजरिम बन के खड़े होंगे। सोचिए जरा किस तरह से अल्लाह ताला ने खोल के इन आयात को बयान कर दिया। और अगर आप सिर्फ इतनी सी आयत को, जिसमें हल्लल्लाहुल बय्य व हर्रम अर्रिबा ही से नहीं रुकते, और उस काबन नार से नहीं रुकते और खालिदून के लफ्ज़ से नहीं रुकते, तो फिर चंद हदीसें सुन लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में क्या फरमाया। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत है, आपने फरमाया कि रिबा के 73 दरवाजे हैं, यानी देर आर 73 डोर्स ऑफ रिबा सूद, जिसमें सबसे हफीफ छोटा हल्का दर्जा क्या है कि बंदा अपनी माँ से जिना का इरादा करे। जी, मिश्कात की एक रिवायत है, शबे मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोगों के पेट बड़े बड़े घरों की तरह हैं, मटके शीशे के, जिनके अंदर सांप दौड़ रहे हैं। सोचिए जरा, एक शीशे का पेट और उसमें सांप है। पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो फरमाया कि ये सूदी मामला करने वाले लोग हैं, सूद खाने वाले, ब्याज खाने वाले, और सांप अंदर उनको डस रहे हैं। इसी तरह एक और रिवायत है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबी सल्लम जब इस सफर में एक जगह से गुजरे तो खून की नहर थी और उसके बीच में कुछ लोग डुबकियां खा रहे हैं, खून उनके मुंह में जा रहा है। बड़ी स्ट्रगल करके वो किनारे की तरफ आना चाहते हैं, जो ही किनारे पे पहुंचते हैं वहां खड़ा एक फरिश्ता पत्थर मार के उसको वापस खून की नदी में डाल देता है। पूछा ये कौन लोग हैं, फरमाया ये सूदी मामला करने वाले लोग हैं। मुस्तदरिक हाकिम की रिवायत है, चार लोग ऐसे हैं कि इन पर लाजिम कर लिया अल्लाह ने कि ना ये जन्नत में दाखिल होंगे ना उसकी नेमतें चखेंगे। नंबर एक, दायमुल खमर, आदी ड्रिंकर, शराबी, आदत है जिसको पीनी ही पीनी है। नंबर दो, सूदखोर। नंबर तीन, यतीम का नाहक माल खाने वाला। और नंबर चार, वालदैन का नाफरमान, उकूकुल वालिदैन। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, किसी कौम में जब सूद आम हो जाता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, रिश्वत आम हो जाती है और दुश्मनों का रोब आने लगता है दिलों पर। तबरानी की एक रिवायत है कि इन गुनाहों से बचो जो मुआफ़ न किए जाएंगे। नंबर एक, माले गनीमत की चोरी, और नंबर दो, सूद। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, सूद का एक दिरहम या रुपया कह लें खाना 36 मरतबा, 36 टाइम्स जिना के बराबर है, बल्कि उससे बुरा है। ये क्यों है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेरा तो दिल करता है इस मामले में सिर्फ हदीस कोट करके आयत कोट कर दूं बस, क्योंकि ये मौजू शदीद बहुत है। अगर ये मैं हदीसों के नाम और नंबर और ये डिक्टेशन स्टाइल इख्तियार ना करूँ ना, तो आप में से कुछ कहेंगे ये हमारी उस्ताद के ख्यालात हैं, वो कहती हैं, ये मेरी जरूरत नहीं है मैं कुछ कहूँ, अल्लाह और उसका रसूल कहने को काफ़ी है। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि लोगों पर एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई भी सूद से नहीं बचेगा, और अगर कोई बचना चाहे तो गुबार तो उसको बहरहाल पहुंचेगा। इसी तरह मुत्तफिकिल है, यानी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, बल्कि इसको सबसे पहले करना चाहिए, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि सात हलाक करने वाली चीज़ों से डरो, सबा मोबिकात, डिस्ट्रॉय करने वाले इंसान के लिए डिजास्टर्स हैं, जो उसमें एक सूद है। सही मुस्लिम की रिवायत, इसको बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत सारे सवालों का जवाब इस एक हदीस में है। सही मुस्लिम में है कि चार लोगों पर सूद की वजह से लानत है। कौन? आकिलुहु, सूद खिलाने वाला, खाने वाला यानी सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूद के मामले को लिखने वाला, डॉक्यूमेंटेशन, किसी काउंटर पे बैठा है इस सारे मामले को लिख रहा है, और उसकी गवाही देने वाला। आकिलुहु, मोकिलुहु, कातिबुहु व शाहिदुहु, इन पर लानत फरमाई। और ये सब बराबर है, देखिएगा जरा कितना बड़ा धोखा है। एक तो चलो सूद पे माल दे के उस पर कुछ पैसा ले रहा है ना, एक सिर्फ अपनी जॉब बचाने के लिए इस मामले को लिख रहा है, जिसको शायद बाद में शायद $50 ही मिलने हो, फरमाए सब बराबर है। इसको कहते हैं गुनाह बेलज़त। सूद की हुरमत पर कुरान पाक में 7 आयतें, 40 हदीसें हैं, और कभी भी इस मौजू पर उलमाए कराम में कोई इख्तलाफ नहीं रहा, यानी किसी दौर के उलमाए कराम ने ये नहीं कहा कि सूद हराम नहीं है। इतनी बातें अल्लाह ताला ने बता के लोगों की आंखें खोल दी कि तुम देख लो, अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है, दोबारा करना है कि नहीं।
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون